पेरिस का नाम सुनते ही जहन में फौरन एफिल टावर, लूवर, शांजलेजे ये सब आता है ना?
बिल्कुल, ये तो जैसे पेरिस की पहचान है।
लेकिन पेरिस सिर्फ यही मशहूर जगह नहीं है, इसकी जो इंतजामी तकसीम है ये अरोंडिस मॉन्ट्स,
जी, अजला जिन्हें कहते हैं।
हाँ ये अजला या हल्के, इनकी भी अपनी एक बड़ी दिलचस्प तारीख है, अपना अलग ही किरदार है।
बिल्कुल, ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं है, हर अरोंडिस मॉन्ट की अपनी एक अलग कहानी है।
अपना माहौल, अपनी वाइब।
तो आज हम इसी पर बात करेंगे, पेरिस के इन 20 हलकों पर।
जी बिल्कुल, देखेंगे कि ये निज़ाम कैसे बना, कैसे बदला। ये 1795 में शुरू हुआ था, सिर्फ 12 थे।
ओ, सिर्फ 12?
हाँ, फिर 1860 में 20 हो गए, शहर बड़ा हुआ तो, और हाल ही में 2020 में भी एक अहम तब्दीली आई है।
अच्छा, तो चलें शुरू करते हैं, फिर समझते हैं पेरिस की इस इंतजामी तकसीम को। पहले ये बताएं, आजकल क्या सूरत हाल है, ये 20 अरोंडिसमेंट्स कैसे काम करते हैं? देखें, आज पेरिस में बाकायदा 20 अरोंडिसमेंट्स हैं। ये 1859 के कानून के तहत बने थे।
अच्छा,
हर एक का अपना पोस्टल कोड है, 570, और फिर आगे जिले का नंबर, जैसे 75001 पहले के लिए, 75005 पांचवें के लिए, वगैरह।
ये तो सीधा सा है।
हाँ, ज्यादातर। बस एक छोटी सी दिलचस्प बात है कि 16th अरोंडिसमो, वो काफी बड़ा है ना,
हाँ सुना है।
तो उसके दो पोस्टल कोड हैं, 75016 भी और 75116 भी।
ओ, ये नई बात थी।
अच्छा, और वो 20-20 वाली तब्दीली आपने जिक्र किया था, मरकज के कुछ इजला को मिला दिया गया।
जी हाँ, वो एक अहम इंतजामी इसलाह थी। 2020 के जो बल्दियाती इंतखाबात हुए ना,
जी,
उसके बाद पेरिस के बिल्कुल बीच वाले पहले 4 अरोंडिसमेंट्स, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इनको इंतजामी तौर पर एक कर दिया गया, मतलब एक सेक्टर बना दिया गया।
अच्छा, एक सेक्टर, इसका कोई नाम भी है?
जी, उससे कहते हैं पारी सौंत्र।
पारी सौंत्र। अब इन चारों तारीखी अजला की ना एक ही मुश्तरका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है और एक ही मेयर है।
तो इंतजामी तौर पर ये अब एक यूनिट है, लेकिन क्या इनकी अपनी पुरानी पहचान, मतलब नंबर 1, 2, 3, 4, वो खत्म हो गई?
नहीं, यही तो दिलचस्प बात है। इंतजामी तौर पर तो ये एक हो गए, लेकिन अपनी अदबी शिनाख्त, यानी 1, 2, 3, 4, वो उन्होंने बरकरार रखी है,
अच्छा,
और उनके पोस्टल कोड्स भी वहीं पुराने हैं।
तो ये क्या क्यों किया, मतलब इसका मकसद क्या था?
इसकी दो बड़ी वजूहात थी। एक तो ये है कि मरकज की अजला वक्त के साथ आबादी में काफी कम हो गए थे,
लोग बाहर शिफ्ट हो गए होंगे
शायद, या कारोबारी इलाके बन गए ज्यादा, तो आबादी का तवाजुन बिगड़ रहा था।
हाँ।
दूसरा मकसद था इंतजामी कारकर्दगी, मतलब एफिशिएंसी बेहतर करना। एक मेयर, एक काउंसिल।
समझ में आता है, ये दिखाता है कि पेरिस बदल रहा है, अपनी जरूरियात के मुताबिक ढल रहा है।
बिल्कुल, तारीख को संभालते हुए भी आगे बढ़ रहा है।
ये तो हुई आज की बात, अब जरा पीछे चलते हैं। ये निजाम शुरू कब हुआ था? आपने 1795 कहा था?
जी, इसकी जड़ें फ्रांसीसी इनकलाब के बाद के दौर में हैं। 11 अक्टूबर 1795 को पेरिस को पहली बार 12 अरोंडिसमेंट्स में तकसीम किया गया।
अच्छा, 1795 में, और तब तरतीब क्या थी?
तब तरतीब आज से बहुत मुख्तलिफ थी। 9 अजला दरिया सैन के दाएं किनारे पर थे, 3 बाएं पर, और नंबरिंग मगरिब से मशरिक की तरफ जाती थी।
तो सिर्फ 12, फिर ये 20 कैसे हो गए? ये जरूर वही मशहूर जमाना बैरन हॉजमन का काम होगा।
बिल्कुल, आप सही पहुंचे। असल कहानी 1860 की है। नेपोलियन सोम का दौर था और उनके प्रेफेक्ट थे बैरन ऑस्मन।
हाँ, जिन्होंने पूरे पेरिस का नक्शा बदल दिया, चौड़ी सड़कें, नई इमारतें।
वही, उनका एक विजन था एक ग्रैंड पेरिस बनाने का।
तो उसके लिए शहर को बड़ा करना पड़ा,
लाजमी था। 16 जून 1859 को एक कानून पास हुआ, उसके तहत पेरिस की जो पुरानी हुदूद थी ना, जिन्हें दीवारे मजारीन आम कहते थे,
अच्छा,
उनसे आगे बढ़ाकर शहर को नई फसील, थियर की फसील, एंसियंट दोथेर तक फैला दिया गया।
मतलब शहर का रकबा बहुत बढ़ गया।
तो जो इलाके आज पेरिस का हिस्सा हैं, वो पहले बाहर थे?
जी हाँ, कई गांव और कस्बे जो आज बिल्कुल पेरिस के अंदर हैं, जैसे पैसी, ओतुई, मोमार्थ, बेलवील, ये सब 1860 में पेरिस में शामिल हुए।
ओ वाओ, तो इसी वजह से इजला 12 से 20 करने पड़े?
बिल्कुल, शहर इतना फैल गया तो इंतजामी तकसीम भी नहीं करनी पड़ी, और यहीं से वो नंबरिंग वाला दिलचस्प किस्सा शुरू होता है।
हाँ, वो 13वें अराउंडिस्मोंड वाली कहानी। मैंने कहीं पढ़ा था कि उसकी नंबरिंग के पीछे कोई मुहावरा था।
हाँ, जी ये बड़ी मजे की बात है। हुआ ये कि जब 20 इजला बन गए तो पहले सोचा गया कि नंबरिंग वैसे ही करेंगे जैसे पहले होती थी, मगरिब से मशरिक।
ठीक है।
इस हिसाब से पैसी और ओतोई जैसे नए शामिल होने वाले अमीर इलाके 13वें और 14वें नंबर पर आ रहे थे।
तो इसमें क्या मसला था? मसला था एक मुहावरा। इस जमाने में पेरिस में एक अवामी थोड़ा सा तंजिया मुहावरा चलता था, एत्र मारिये उत्खेजियम आगोंदिस्मा।
अच्छा, इसका क्या मतलब बनता था?
इसका लफ्जी मतलब तो है 13वें जिले में शादीशुदा होना, लेकिन ये असल में उन जोड़ों के लिए इस्तेमाल होता था जो बगैर शादी के साथ रह रहे हों।
मतलब एक गैर रस्मी नामुनासिब ताल्लुक।
बिल्कुल। तो पासी के जो अमीर और मुअज्जज शहरी थे, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके शानदार नए इलाके को ये 13 नंबर मिले और लोग मजाक उड़ाएं।
जाहिर है, तो उन्होंने क्या किया?
बासी के मेयर थे जॉन फ्रेडरिक पोजो, वो सीधा बैरन ओस्मान के पास पहुंच गए।
अच्छा।
और उन्होंने ये मसला बताया, साथ ही एक मुतबादल तजवीज़ भी दी। उन्होंने कहा कि नंबरिंग मगरिब से मशरिक करने के बजाय शहर के बिल्कुल मरकज से शुरू करें।
मरकज से?
जैसे लूवर के पास से? जी हाँ। और फिर घड़ी की सुइयों की सिमत में एक स्पाइरल बनाते हुए बाहर की तरफ नंबर देते जाएं, जैसे घोंगे का खोल होता है।
ये तो बड़ा अनोखा आइडिया था।
हाँ, और ओस्मान को ये तजवीज पसंद आ गई। उन्हें ये मंतकी भी लगी और खूबसूरत भी। उन्होंने उसे फौरन मान लिया।
तो इस वजह से आज पेरिस के इजला की तरतीब ऐसी है, मरकज से शुरू होकर गोल घूमती हुई।
बिल्कुल, इसी वजह से। और 13 नंबर फिर एक निस्बतन कम अमीर ज्यादा सनती इलाके को मिला जो शहर के जनूब मशरिक में था।
कमाल है, एक मुहावरे ने पेरिस के नक्शे की तरतीब बदल दी। वाकई शहरों की कहानियां भी अजीब होती हैं।
जी, ये दिखाता है कि शहरी मंसूबा बंदी सिर्फ ईंट पत्थर का खेल नहीं, इसमें समाजी और सकाफती पहलू भी शामिल होते हैं।
अच्छा, तो 1860 के बाद भी कोई तब्दीलियां हुई हुदूद में?
कुछ मामूली सी हुई 1920 की दहाई में, जब वो थियर की फसील गिरा दी गई।
जी।
तो शहर की सरकारी हुदूद को थोड़ा सा और बढ़ाया गया, खासतौर पर दो बड़े जंगलाती पार्क, मगरिब में बुआ द बुलोनी और मशरिक में बुआ द वेंसीन।
हाँ, वो बहुत बड़े पार्क्स हैं।
उनको बाकायदा तौर पर शहर का हिस्सा बना दिया गया। बुआ द बुलोनी 16वें और बुआ द वेंसीन 12वें अरोंडिसमोंग में शामिल हो गए।
ठीक है।
एक और बात अहम है, ये जो 20 अरोंडिसमोंग्स हैं ना, ये साइज और आबादी में बहुत मुख्तलिफ हैं।
अच्छा, जैसे?
मिसाल के तौर पर 15वां अरोंडिसमोंट रकबे में दूसरे से तकरीबन 8.5 गुना बड़ा है।
8.5 गुना?
जी, और आबादी में देखें तो पहला अरोंडिसमोंट बहुत छोटा है, जबकि 15वें में इससे 14 गुना ज्यादा लोग रहते हैं।
ओह, और आबादी की गुंजानियत, मतलब डेंसिटी?
वो 11वें अरोंडिसमोंट में सबसे ज्यादा है, बहुत घनी आबादी है वहाँ। ये फर्क भी पेरिस के अंदर के तनवों को जाहिर करते हैं।
तो खुलासा ये हुआ कि ये अराउंडिसमेंट सिर्फ इंतजामी यूनिट नहीं है, ये पेरिस की 250 साल की तारीख, उसके समाजी उतार चढ़ाव, शहरी तरक्की, सबकी कहानी सुनाते हैं।
बिल्कुल, 1795 के 12 अजला से सफर शुरू हुआ, फिर 1860 की बड़ी तब्दीली आई, ओस्मान की वो सर्पल वाली नंबरिंग, और फिर 2020 की वो मरकज वाली इस्लाह।
ये निजाम मुसलसल बदलता रहा है शहर की जरूरियात के साथ।
जी, ये पेरिस के एक जिंदा मुतहर्रिक शहर होने का सबूत है। वो अपनी इंतजामी जरूरियात के मुताबिक खुद को ढालता रहता है।
बिल्कुल।
और यहां से ना एक और दिलचस्प सवाल पैदा होता है।
वो क्या?
आजकल आप सुनेंगे, खासतौर पर मीडिया में या बिजनेस की दुनिया में, लोग पेरिस के बिल्कुल करीबी मुजाफात को भी ना,
जी,
जैसे वो बड़ा कारोबारी मरकज है लादिफों, या अमीर इलाका नुई सुरसैन,
हाँ हाँ,
यहाँ तक के कभी कभी मजाक में फ्रांस के साहिली शहर डोविल को, या बेल्जियम में ब्रसल्स के इलाके एक्सेल को भी 21वां अरोंडिसमेंट कह देते हैं।
है? ये तो मैंने भी सुना है, 21वां अरोंडिसमों।
जी, ये गैर रस्मी तौर पर सही, लेकिन ये एक सोच को जाहिर करता है।
क्या मतलब? कि पेरिस की हुदूद अब सिर्फ वो 20 इजला नहीं रहे?
हाँ, कुछ ऐसा ही। ये सवाल उठता है कि आज के दौर में पेरिस असल में है क्या, کیا وہ صرف ان رسمی 20 حلقوں تک محدود ہے، یا اس کا اثر، اس کی شناخت، اس کی ثقافت، اس کا معاشی دائرہ ان انتظامی حدود سے کہیں آگے تک پھیل چکا ہے؟
یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ انتظامی سرحدیں ایک طرف، لیکن شہر کا جو اثر ہوتا ہے وہ تو اکثر سرحدوں کو نہیں مانتا۔
بالکل، تو یہ ایک سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ پیرس کی اصل روح کہاں تک بسی ہوئی ہے؟ مستقبل میں پیرس کا تصور کیا شکل اختیار کرے گا؟ یہ دیکھنا واقعی دلچسپ ہوگا۔
صحیح کہا، یہ ایک بہترین نقطہ ہے ہماری آج کی گفتگو کو ختم کرنے کے لیے۔ پیرس جو اپنی حدود بدلتا رہا، شاید اب بھی بدل رہا ہے، بس ایک نئے انداز میں۔